ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयो मुदीरये। शृणुतं सुकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 अध्याय के शीर्षक है पूर्ण पुरुष का आचरण पास संन्यास के लक्षण। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 25 पर अध्याय 13। ठीक है, एक भगवत गीता चाहिए। बोलिए मेरे पीछे। जद्रुच्छया लोकमीमं प्रापितः कर्मभिभ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरस्सा पुनरस्य च। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जद्रुच्छया भौतिक प्रकृति की तरंग द्वारा ले जाया जाकर लोकम मनुष्य रूप इमम यह प्रापितः प्राप्त किया गया है कर्म भी विभिन्न सकाम कर्मों के प्रभाव द्वारा भ्रमण एक जीवन से दूसरे जीवन में घूमते हुए स्वर्ग स्वर्गलोक अपवर्गयो मुक्ति के द्वारम द्वार तक तिरस्सम निम्न जोनियों तक पुनः फिर अस्य मनुष्यों की च तथा। अनुवाद। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्म से उत्पन्न होती है यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है। तो मनुष्य रूप कैसे प्राप्त होता है? कैसे? सकाम कर्मा। और ये सकाम कर्मा के आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और ये शरीर के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? जो हमें स्वर्गलोक तक मुक्ति तक निम्न जोनिया तक या मनुष्य के बीच पुनर् जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। तो मनुष्य सब द्वार तक पहुंच सकता है, यहां जंक्शन है, स्वर्ग जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, बीच में भी रह सकते हैं और अन्य योनि में भी घूम सकते हैं। तो ये फ्री लाइफ है ये मनुष्य शरीर, ठीक है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सभी जीव प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु की इस संघर्ष को विकास प्रक्रिया कहा जा सकता है, किंतु पाश्चात्य जगत में इसकी असत्य विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डर्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता, परंतु इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भलीभांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने की स्वर्ग अपवर्ग या नीचे गिरने का तिरस्सान पुनरस्य च और फिर पुनर्वार जन्म लेने का अवसर है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह उच्च लोक जा सकता है, जहां तक लोक की अपेक्षा जहां इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजार गुना श्रेयस्कर है, या फिर वह ज्ञान का अनुसरण कर सकता है जिससे वो विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन को पवर्ग कहलाता है, क्योंकि यहां पर हमें दुख की पांच विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्हें प फ ब भ म अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है, इसको कहते हैं प वर्ग। प का अर्थ है परिश्रम, फ का अर्थ है फेन जो घोड़े की मुंह से निकलता है झाग, जो अधिक परिश्रम करने पर घोड़े के मुख से निकलता है। ब का अर्थ है व्यर्थता बा निराश, कठिन परिश्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है। और भ का मतलब है भय जो कर्म की परिणाम है। भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा म का अर्थ है मृत्यु। जीवन की इन पांच विभिन्न अवस्थाओं प फ ब भ तथा म को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। तिरस्सम शब्द पति जीवन का सूचक है। निसंदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि पश्चिम के व्यक्ति सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वो अधिक सुखपूर्वक रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग हेतु नहीं करता तो वो पुनः कुकर सुकर की निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतः विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वो उच्च लोक को जाना चाहेगा, अपने आप को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से पक्रम द्वारा उच्च तथा निम्न जोनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करता है तो वह उच्च लोक को जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम आपस भी जा सकता है, अन्यथा वह कुत्ते या सुकर की निम्न जोनि में गिर सकता है। जैसे कि भगवत गीता 9:25 में बताया गया है, जानति देव व्रता देवान। जो मनुष्य उच्च लोक देवलोक या स्वर्गलोक को जाने के इच्छुक हैं, उन्हें ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन क्या है, एक तैयारी करना है। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहता है और भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है, उन्हें ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए। इसलिए हमारे कृष्ण भवनामृत आंदोलन मानव समाज हेतु सर्वोत्कृष्ट वरदान है, मैचलेस गिफ्ट, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवत धाम आपस जाने की शिक्षा देता है। भगवत गीता 13:22 में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न रूप भौतिक प्रकृति के तीन गुण के संयोग से प्राप्त होती हैं, कारणम गुण संगस्य सत असत ज्योनि जन्मसु। इस जीवन में सत्व रज या तम गुण की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी भौतिक प्रकृति की विभिन्न संगति के अनुसार विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक जूनिया कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियम से अनभिज्ञ है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भौतिक प्रकृति के तीन गुण के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने आप को इन समस्त कार्यों के कर्ता मान बैठता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3:27 क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते। हर जीवात्मा भौतिक प्रकृति के कठोर नियम के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूढ़ जन अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, यह अल्पज्ञता है। अल्पज्ञता पूर्ण सभ्यता अतीव खतरनाक है। अतएव कृष्ण भवनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने के प्रयास कर रहा है कि वो प्रकृति के कठोर नियम के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र हैं, और यह उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाने की प्रयास कर रहा है। इन भौतिक नियम के पीछे परम नियंता भगवान श्री कृष्ण, जिनकी अध्यक्षता में इस प्रकृति कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अतएव यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहता है तो भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। मामे बजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो वह तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो भक्ति के अनुष्ठान करता है अव्यभिचारिणी भक्ति, तो प्रकृति की तीन गुण के चंगुल से वो छूट सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। नम महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतेर्महद्भीजयमः पुरो विभो निर्मायसे ते जदमोऽस्य पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के चरण में वंदन है। और सबके अभिनंदन भी हैं कि हम श्रीमद् भागवतम जो भक्ति में हमारे निष्ठा उत्पन्न करती है व भक्ति को दृढ़ करते हैं, इसलिए हम प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसको श्रवण करते हैं। तो आज एक सिद्ध पुरुष अपने आत्म जीवन की कथा बता रहे हैं, क्योंकि जीवन की सिद्धि इसी से ही हमको प्राप्त होती है। किससे? एक सिद्ध पुरुष की संगति लाभ करने से। तो ये जो प्रसंग नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में चर्चा चल रही है, लेकिन डायरेक्ट किसकी प्रसंग है ये जो चर्चा होगा अभी, जो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो किसकी प्रसंग है? किसकी? प्रहलाद और दत्तात्रेय मुनि। ये दत्तात्रेय मुनि किस प्रकार आचरण कर रहे थे व किस वृत्ति को अपनाए थे? गुड, अजगर वृत्ति। अजगर का मतलब क्या होता है? पड़े रहना। अजगर नकरे चाकरी है ना, इसे बोलते हैं ना, कोई नौकरी नहीं करता है अजगर। तो वे वृत्ति अपनाने की क्या अभिप्राय क्या है? हाँ, पूर्ण रूप से शरणागति। और क्या हो सकता है? हाँ, भगवान की निर्भर रहना, वही तो शरणागति है। और दूसरा क्या हो सकता है? अपने भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण करना। क्योंकि हम सब भौतिक इच्छाओं के चंगल में हैं। खाचे हाबो डुबो भाई, मिछे मायार बेसे, मिछे मायार बसे। फिर आगे याचे भेसे खाचे हाबो डुबो भाई, जीवा कृष्ण नित्य दास करिले ए विश्वास, आर तार दुख नाही। तो ये जो माया की तरंग के द्वारा हम कैसे बह रहे हैं, ये पूर्व श्लोक में चर्चा हुआ है। ये सब इच्छा की तरंग है, ये सब हम सबको फ्लो करके लेके जा रहे हैं। हम सोच रहे हम कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, प्रकृति की गुण करा रही है। इसलिए ये संसार गुण से बना हुआ है। त्रिभीर गुणर्मयी भावे रेभि सर्वम इदम जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यं परम अभयम्। तो इसलिए जीव मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि गुण के द्वारा बाईस रस्सी, ये माया की रस्सी के द्वारा सभी जीव को भगवान मोहित कर रहे हैं। इसलिए भगवान की अव्ययता को हम नहीं समझ पाते हैं और इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान सब कुछ है, ज्ञानत्वा मां शांति मृच्छति, उसी दिन हमको पूर्ण शांति प्राप्त होती है। इसलिए अज्ञान व्यक्ति वो जान नहीं पाता है। अज्ञान क्यों है? कारण क्या है कि हमारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनिश्यति। तो एक तो हम अज्ञ भी हैं परंतु सोचते हम विज्ञ हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई हमारे अंदर श्रद्धा भी नहीं है। तो इसलिए हमारे अंदर संशय बनी रहती है, हम भगवान के शरणागत हो कि अपने अहंकार के। तो अहंकार हमको विमूढ़ कर देता, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो इसलिए हम मूर्खता ही बने रहेंगे। तो पूर्ण शरणागति ही पूर्ण ज्ञान है, और ये बहु जन्म की तपस्या करने के बाद ये शरणागति आती है। बहुनांग जन्मनांग अंते ज्ञानवान मांग प्रपत्यते। भगवान के शरणागत कौन होता है? बहु जन्म जन्मांतर की जो ज्ञान को अभ्यास करते हुए ज्ञानवान बन जाता है, जैसे धन इकट्ठा करते करते धनवान होता है, तो जो व्यक्ति इसी प्रकार भगवत संबंधी ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करके प्रति जन्म में बहुनाम जन्मनां अंते, क्योंकि चेतना कर्म ज्ञान और योग की ग्रंथि से युक्त है, परंतु जो ज्ञानवान बन जाता है उसकी ग्रंथि कट जाता है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय, संशय उसी समय मिटता है कि भगवान के हम पूर्ण शरणागत होने के लिए उस समय पूरा हमारे हृदय मन हमारे विचार सब प्रकार से, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार भाव से भगवान की शरणागत होना चाहिए। तमेवं शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत, इस भाव को लेकर के व्यक्ति शरणागत होता है, और ये शरणागत होने पर भगवान की एक गिफ्ट मिलता है, जैसे प्रभुपाद कहे कि अनुपम उपहार क्या है, तत्प्रसादात परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, तो उसको जीव को परम शांति प्राप्त होता है। इसलिए कर्म की ग्रंथि को काटना बहुत कठिन है, कर्म के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते जानो समझो इसको अर्जुन, कर्मणं ह्यापि बुद्धेवं बुद्धेवं च विकर्मण अकर्मणस्य बुद्धेवं गहना कर्मणं गति। तो कर्म किस प्रकार गति प्रदान करता है इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं सिद्ध पुरुष। क्या गति प्रदान करता है, न कर्म भी प्रापितम लोकम, अलग अलग लोक को जीव स्थानांतरित होता है कर्म के अनुसार, और भ्रमण भ्रमण भी करता है। तो इसलिए ये जो कर्म की कमाई है ये शरीर, इसको ठीक से हम यूटिलाइज करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि हमारे इस्कन में जो चार प्रिंसिपल है इसमें है यूटिलाइजेशन इज द प्रिंसिपल। तो क्या है, क्योंकि शरीर एक हमारी नौका सदृश है, जान है, जान का मतलब है करियर, ये हमारे जान का भी दूसरा अर्थ है जीवन है, इसी से हम यात्रा करते हैं। ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया, आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, पीछे लोग भेड़ कर दिए, आगे आ जाए नहीं तो पीछे लोग आगे आ जाए, कुछ लोग शर्माते हैं, आप लोग माता जी लोग भी आ जाइए। तो कर्म जो है ये शरीर को कैसे निर्माण करता है, ऋषभदेव पंचमा स्कंद में बताए हैं, आप लोग उनकी शिक्षा पढ़े हैं, कर्मात्मकं जेन शरीरबंध, ऋषभदेव बता रहे हैं, पराभवस्तावत् अबोध जात जावन्न जिज्ञासित आत्मतत्त्वं जावत् क्रियास्तावत् इदं मनो ये कर्मात्मकं येन शरीरबंध। शरीर एक बंधन भी है, और शरीर को हम यदि सदुपयोग करें वो मुक्ति की द्वार भी खोल सकता है। इसलिए कहते तमद्वारम जोषित संग संगिन महत् सेवा द्वारं आहुर विमुक्ते। इस शरीर को किसकी सेवा में लगाना चाहिए, महत् सेवा, तो फिर द्वार तो खुल जाएगा मुक्ति के द्वार। और ये संसार में सब कर्मात्मकम और कामात्मकम, काम केवल इंद्रिय भोग के लिए हमको प्रेरित करता है, तो संसार की यही कारण है जोशिता संग संगे। ये काम की कारागार में हम रहते 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 आदत भी पड़ गया है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं ताबत कार गृहं गृहं ताबत मोहांग्रि निगडं ताबत रागदयस्तेनं जाबत कृष्ण नतीजना। कृष्ण को हम जान नहीं पाते, हालांकि कारागार में भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए, लेकिन इस माया कारागार में रहते रहते हमारे आदत पड़ गया है, हम छूट नहीं सकते। शायद मैं पिछले क्लास में बताया था, कुछ भक्तों को याद होगा, आगरा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे 2005 में। तो हमारे एक ब्रजवासी था, उसका नाम था प्रसन्न, तो महाराज को इनवाइट किया कि महाराज थोड़ा से कैदियों को थोड़ा 10 मिनट। तो महाराज रास्ता में जा रहे थे, कहते देखो 10 मिनट टाइम लिया तो 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, और पहले से सब अरेंज करके रखो। तो जब गए देखे तो लगभग 3500 कैदी थे, सब पूरा डिसिप्लिन्ड, जैसे उनको ड्रेस मिला है, उनको कमांड मिलता है, तो पूरा डिसिप्लिन्ड है। तो महाराज कहे कि थोड़ा सा कीर्तन करा लो, तो एक हनुमान मंदिर था, तो कीर्तन किए सब कैदी, कुछ कैदी गए और कुछ कैदी पालती मार के बैठे हुए थे। तो एक बहुत उत्साह से वो कीर्तन कर रहा था, ढोलकी बजा रहा था। तो हनुमान मंदिर के पीछे केला की पेड़ था, तो मैं उनसे पूछा, तो आप तो अच्छा ढोलकी बजाते हैं, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं, क्या आप यहाँ सुपरवाइज कर रहे हैं? कहते महाराज मुझे तो बहुत प्रेम है भजन में, और कीर्तन होता है ना मेरा दिल नाचता है। लेकिन अच्छा आप कितने साल से हैं यहाँ पर हैं? कहते मैं 23 साल से हूँ। लेकिन उम्र कोई तो 20 साल होता है, आप 23 साल में क्यों हैं? कहते महाराज मैं 19 साल में छूट गया था, फिर 4 साल आकर मैं खुद अपने आप ही वॉलंटरी रह रहा हूँ। मैं पूछा क्यों? तो अपनी कथा बताया कि मैं जिस दिन गया मेरा दाढ़ी बढ़ गया था, रात में पहुंचा पत्नी दरवाजा नहीं खोला, मच्छर काटा, बुखार हो गया, कोई मेडिसिन देने के लिए नहीं था। तो मैं सोचा भाई हमारा जेल में कुछ भी हो जाए डॉक्टर आकर हमारे पास पहुंच जाता है। तो पत्नी ने बहुत गाली दी, 2 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, तुम मर रहे थे कहाँ? मैं तो सोचा तो बहुत अभ्यर्थना हो गया, यहाँ 2 दिन खाया नहीं, तीसरा दिन जैसे भी मेरा ठीक हो गया, मैं सोचा कि मैं जाऊँ आगरा फिर। और मैं छुपके रात को टिकट काट करके बस में आ गया। उनका MP में कौन सी जगह था? कहता महाराज मैं अच्छे से बोस्टिंग भी करता हूँ वॉलीबॉल, तो इसलिए मुझे नेशनल टीम में बुलाते हैं। मैं सत्य घटना बोल रहा हूँ, और मैं अभी 700 कैदी का इंचार्ज हूँ, और मैं अपने लिए अच्छा अच्छा फुल्का बना लेता हूँ, और यहाँ जो सब्जी होता है मैं खुद पका लेता हूँ। तो मैं सोचा देखो लोग सोचते हैं कि मैं कब जेल से छूटूं, लेकिन वो थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए वो फिर उन्होंने जेल में आकर के रहा। कहता मैं आराम से जिंदगी बिता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मार्च। तो हमने भी विचार किया सचमुच कि हमारी जो मायावद्ध जीव है ये जेल में रहते रहते उसकी आदत भी पड़ गया है, और कुछ भी ऐसे फैसिलिटी मिलता है तो उसको परम सुख मान लेता है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते कि इसी प्रकार जो मोहांग्रि निवेदम ताबात कारम गृहम गृहम, ये घर में जो प्यार और महाबत है उसमें ही जीव मोह की जाल में फंस जाता है, मोह जाल समाप्रता। कहते तब तक ये जाल कटता नहीं है, टूटता नहीं है। कब ये जाल कटता है टूटता है? कब? ये जो कहे महांतस्ते महत सेवांग द्वारंग आहुर विमुक्ते। जब तक महान व्यक्ति की हम सेवा नहीं करते हैं, उनके संग प्राप्त नहीं करते हैं, ये जाल टूटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। प्रहलाद जी भी इस प्रकार कह रहे हैं कि हे महाराज मिस्टर हिरण्यकशिपु, कि तब तक आप इस गृह अंधकूप से निकल नहीं सकते। मतिर्न कृष्णे परतो सतो बा मिथ्यो विप्रदेत गृह व्रतानम अदांत गोभि विसतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्बणानम। आप चुवाते रहेंगे ऐसे ही, टेस्ट मिल रहा है ना कि, लेकिन है ही नहीं कोई इंटरेस्ट आपका कृष्ण भावनामृत में। फिर जब बाप ने बुलाया, बेटा ने यही बोला कि तब तक आपकी कृष्ण के चरण कमल में अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता है। कब होगा? हाँ, महत्पाद रजो अभी निष्किंचनानं ब्रुणीत जावत् नय सम्मति स्तावत् उरुक्रमांग्री स्पृश्यन्ति अनर्थं अपगमं जदर्थं महीय संपादरजोभिषेकं निष्किंचनानं न ब्रुणीत जावत्। जब तक हम खुद ही ग्रहण नहीं करते हैं ऐसे निष्किंचन अकिंचन भक्त की सेवा करने के लिए, तब तक ही काम रोग ये हृदय से नहीं जाएगा, मिटेगा नहीं। इसलिए कह रहे कि जद्रुच्छया ये भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कथा जद्रुच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध इद्रुसम। और ऐसे युद्ध भी प्राप्त करना ये भाग्य की बात है। और युद्ध करते हुए तुम यदि मर जाओगे ना, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग के द्वार खुला हुआ है। मर जाओगे तो स्वर्ग, और जीत जाओगे तो भोग। हतोबंग प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वाबंग भोक्ष्यसे महिम। इसलिए अर्जुन तुम खड़े होकर के युद्ध करो। तस्मात उदिष्ट कुंतेय युद्धाय कृत निश्चय, डिटरमाइंड होकर के युद्ध करो। तुम्हारे लिए दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, दोनों हाथ में लड्डू है। तो भोग की भी इच्छा है, हम वियोग नहीं होंगे। लेकिन कृष्ण के लिए यदि हम कुछ करें और मरे तो उससे हमारी सफलता है। सेवा हमको जोग में जोड़ता है, भोग हमको भगवान से वियोग करता है। परंतु प्रभुपाद कहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में क्या कमी है? क्या अच्छी लड़कियां नहीं है? हमारे पास खाने पीने की कुछ कमी है रहने के लिए? हम सबसे अच्छे स्थान में रहते हैं और सबसे अच्छे हम भोजन करते हैं प्रभुपाद कन्वर्सेशन में। तो फिर क्यों कृष्ण भावनामृत को हम छोड़ देते हैं? इसमें कमी क्या है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में क्या पूर्णता है? मनुष्य जीवन की तभी पूर्णता होता है उसके समझ पर, उसके अंडरस्टैंडिंग पर। और कृष्ण चेतना में हमारी विकास भी होती है। उपदेशामृत में प्रभुपद इंट्रोडक्शन में दिए हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिशनर। जो कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करता है उसकी अनुभव क्या है। इसलिए भगवान भाव प्रदान करते हैं, हम अभ्यास करें भगवान भाव देते हैं। ददामी बुद्धि जोगंत, इसमें कोई अभाव नहीं है। हम स्वर्ग अपवर्ग प्रभुपाद समझा है कि ये प्राप्त करना बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, परंतु भक्त इसको इच्छा भी नहीं करता है। क्यों इच्छा नहीं करता है? कि भगवत भक्ति में इतनी पूर्णता है, इतने सुख है, तो भक्त और कुछ नहीं चाहता है। जंगलब्ध्वा चापर अंगलाभंग मन्यते नाधिकम ततः जस्मि स्थितो न दुखेन गृणापि विचल्यते गृणापि दुखेन अपि न विचल्यते। विचलित नहीं होता है क्योंकि उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरं न जाचे, और कुछ मुझे वर नहीं चाहिए, वर मुझे नहीं चाहिए। बणिक लोग हैं, व्यापारी लोग जो भक्ति में व्यापार करते वो वर चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी वर नहीं चाहिए। इसलिए एक जोगी और भोगी में यही अंतर है। जोगी हमेशा ही संतुष्ट है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। नारायणा पर सर्वे न कुतस्य न विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम्। क्योंकि नारायण परा है, उसकी हृदय नारायण के लिए ही दे चुका है परायणा। भगवान तो इसलिए कह रहे हैं कि चित्त को मुझे में लगाइए तो फिर परा हो सकते हैं। चित्त नहीं लगता है, चित्त लगाने के लिए भगवान उपाय भी बताए हैं, बोधयंतम परस्परम फिर मच्चित। अगर चित्त नहीं लग पाया तो जानना चाहिए कि हम लोग बोधयंतम परस्पर नहीं कर रहे हैं, हम कथा कीर्तन में हमारे रुचि इतना नहीं है, तो इसलिए चित्त नहीं लगता है। और भगवान कह रहे हैं कि अगर चित्त नहीं लगेगा तो बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? यदि मुझ में चित्त लग गया तो बेड़ा पार हो गया। मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति अथ चित्त न श्रोष्यसि विनंख्यसि। तो निश्चित रूप से विनाश को हम इनवाइट करें। सर्व दुर्गाणी तरीस्य से हम अतिक्रमण कर सकते सारी विपत्तियों को, मत प्रसादात। इसलिए चित्त को लगाने के लिए कर्मों को भी अर्पित करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्बाणं मत विपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। और जब तक प्रसाद नहीं है हम प्रसन्न भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनेक जो चिंता है, इच्छा है, उसमें हम एडिक्ट हो जाएंगे। जैसे कहते हैं डेड बॉडी को कुत्ता, सियार और गीत, चील सब खींच लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है। तो उसी प्रकार जिसके चित्त भगवान में नहीं लग रहा है तो इच्छा रूपी कुत्ते सियार उसको खींचते रहते। ये नरोत्तम दास ठाकुर के एक पद है, गोविंद प्रभु जानते हैं ये पद, प्रेम भक्ति चंद्रिका में है। ये शब्द कह रहे हैं कि जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है इसको अनेक प्रकार के प्रलोभन उसको खींचते हैं, ये कुत्ता सियार और गिद्ध की तरह है। इसलिए प्राण केवल आंखों भगवान में लगाना चाहिए, इसमें है मत चित्त। चित्त लगाने के लिए कर्मों को भी अर्पित करना चाहिए। यहां वृंदावन में प्रभुपाद के समय एक कलकत्ता से कोई क्या कहते जमींदार आया था, तो प्रभुपाद कहते कि वो अपने जीवन भर की कमाई सब अपने बेटा बेटी के नाम में दे है। और आखिरी में वो वृंदावन आ गया जप करने के लिए, तो प्रभुपाद कहते हैं कि सुखा झोली में भगवान प्रसन्न हो जाएंगी केवल माला हिलाने से। माल तो दे के आए कहां, बेटा बेटी को, अब माला हिलाने से क्या मिलेगा? चित्त तो वहीं पर लगेगा ना, तो जीवन की सारी कमाई दी है। इसलिए भगवान कहें कि हे अर्जुन तुम यही करो। क्या करें? 11वां अध्याय के आखिरी श्लोक क्या है, कौन बताएगा? नहीं, 11वां अध्याय की अंतिम श्लोक, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु जसमामेति पंडव। भगवान क्या बोले, क्या बोले पहले? मत कर्म कृत मत परम, पहले मुझे परम मानो और मेरे लिए कर्म करो। इससे ही आप संग से बच जाओगे, असत संग से, और निर्वैर भी हो जाओगे। जो राग द्वेष के संसार है बैरी निर्वैर सर्वभूतेश, और निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त करोगे, मैं 100% ग्रेंट देकर करूंगा। जस मामेति पांडव, आप मुझे ही प्राप्त करोगे, ये संसार को नहीं। तो ये कर्म बंधन को जीव उत्पन्न करता है, लेकिन एक भाव की बंधन हो जाए ये कर्म बंधन कट जाता है। आप जानते हैं राम जी के एक छोटे से पास्ट टाइम्स में कहता हूं कि जिस समय भगवान श्रृंगवेकपुर से पार होकर जा रहे थे गंगा नदी पार होने के लिए, तो सारे अयोध्यापुरी की संकेत साकेतवासी सब इतने बिरह थे, बिरह में थे, क्योंकि भगवान वो जब सोए थे उस समय उनको छोड़ के चल गए। और सुमंत को बोले, सुमंत तुम रथ लेके चलो। तो सुमंत ने रथ लिया और गंगा नदी के तट पर ही भगवान का तो रोक दो। तो भगवान सुमंत को बोले, तुम जाओ मेरे पिताजी को ये संदेश दे दो कि मैं 14 साल ही वनवास करके वापस लौटूंगा। सुमंत ने बोला, नहीं नहीं, महाराज के आदेश से आपको केवल वन भ्रमण करके ले आऊंगा। कहते नहीं सुमंत, मेरी निवेदन। लेकिन सुमंत मतलब भगवान को छोड़ करके जाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और घोड़े भी जो राम जी की स्पर्श सुख प्राप्त किए वो कैसे भगवान को भूल सकते, घोड़े भी जाना नहीं चाह रहे थे। तो सुमंत बहुत विरह से उन्हें रथ पर बैठा, रो रो करके, घोड़ा न चलने पर भी उनको जबरदस्ती लेके उन्हें फिर गए। तो फिर भगवान नदी पार करने के लिए उस केवट को बुलाए, केवट आओ ना मुझे पार करा दो। केवट ने कहा, मैं तो जानता हूं आपके मर्म जानता हूं, आपकी चरण का मर्म जानता हूं। अरे जो आप जिसकी चरण से गंगा नदी निकला है वो गंगा को पार नहीं कर सकता है। तो केवट ने अपने भाव को जोड़ा, कैसे कैसे भाव को जोड़ा आप देखो। वो कहते, मैं मर्म जानता हूं, आप पत्थर को नारी बना देते हो और मेरे तो ये एक सामान्य काट की नौका है, वो ये नारी बन जाएगा तो मेरी पत्नी भी कहेगी तुम दूसरे शादी करके आए हो, और यही नाव ही मेरे संबल है परिवार को पालने के लिए, तो मैं कैसे दो दो पत्नी का निर्वाह करूं, एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर पाता हूं। तो भगवान फिर करे कि अरे थोड़ा जल्दी करो, हमको पार करना है। लेकिन ये कहता, नहीं पहले तो आपकी चरण धोऊंगा तब फिर। तो भगवान फिर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारे भला होगा ऐसे ही करो। तो लक्ष्मण को थोड़ा से क्रोध आ गया, कहता क्या है प्रभु। भगवान पूछे, क्यों आप क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण। कहता आपकी भक्त ऐसे ही होते हैं, एक को आप बोल रहे कि जाने के लिए वो जाता भी नहीं है, एक को आप बुलाते वो आता भी नहीं है, तुम्हारी भक्त ही ऐसे होते हैं। भगवान थोड़ा मुस्कराए और कहे कि भाई आपके बारे में भी थोड़ा विचार कर लो, मैं आपको मना कर रहा था मेरे साथ मत आओ, सीता जी को भी मना किया वो भी आए, तो तुम कहां मेरी कहना माने। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तभी मेरी भक्त मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है कोई मुझसे तो अधिक प्रेम करता है, तुम दोनों का बहुत प्रेम है, तो ये भी मेरी आज्ञा को पालन कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, नहीं मान रहे, ये भी समझना चाहिए कि क्यों मना कर रहे हैं। इनकी भी हृदय में आप जैसे ही कुछ प्रेम पड़ा है और ये प्रेम के भाव को मैं ही समझता हूं। तो भगवान उनको चरण बढ़ा दिए, कोटोती में पानी लाया, धोया और नौका में बैठाया। पहले तो अपने कपड़ा में भी पूछा, और पार करने के बाद भगवान देख रहे हैं कि सीता जी कुछ तो दे, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं बहुत दिन से मजदूरी किया हूं लेकिन आज मुझे मजदूरी मिल गया है, मजदूरी किया लेकिन मजदूरी नहीं मिला था, आज मुझे मजदूरी मिल गया है, मूल्य मिल गया कि मैं जब आपके चरण को स्पर्श किया उसी समय मेरी सारी कर्म की बंधन कट गया, केवल मेरे नहीं मेरी परिवार का भी उद्धार हो गया, पितरों का भी उद्धार हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये कर्म बंधन काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक बार यदि भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए, ये सारे ग्रंथि एक समय जैसे निहार ईव भास्कर, कहते सूरज उगने पर जैसे कोहरा की कोई स्थिति नहीं रहती है, अंधकार की कोई स्थिति नहीं रहती है, तो उसी प्रकार भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने पर ये सारी हृदय ग्रंथि कट जाती हैं। श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि अवद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके तदा रजोस्तमो भावा कामालोभादयस्य चेतं इतारना विद्धं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया खीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरी। उस समय भगवान के दर्शन होता है, ये है साधु संघ। और भगवान प्रभुपाद इस श्लोक में कोट किए हैं, 14वां अध्याय के आखिरी श्लोक क्या था, मांग च जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये ब्रह्म भूय हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ब्रह्म जैसे गुण को प्राप्त कर लेगा तब फिर ब्रह्म के साथ निवास करेगा। लेकिन वो भक्ति की क्या श्रृंखला बता रहे हैं, अव्यभिचारेण, एक समर्पित पत्नी जैसे अपने पति की सेवा करने के लिए श्रृंगार भी करती है, लेकिन भाव है, व्यभिचारी भाव नहीं, अन्य पुरुष के साथ नहीं है भाव। प्रभुपाद एक दृष्टांत ये जो अव्यभिचारी शब्द के ऊपर इंग्लिश लेक्चर में मैं सुना हूं, कहते सी इज ऑलवेज ओबीडियंट, पहला भाव तो होना चाहिए कि जैसे भगवान ने कहे, पति जैसे कह रहे हैं तो पत्नी को चाहिए कि हाथ जोड़कर इसको स्वीकार करे, तर्क वितर्क ना करे। सेकेंड, वो जो कहे इसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं परफेक्ट कर रहा हूं ये भाव भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु पति को नहीं बोलना चाहिए कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, मैं ठीक से बनाया हूं, आप क्यों कमी देख रहे हैं। दैन्य भाव से निवेदन करते हुए कि मेरे भी एक छोटे से उपहार, छोटे से निवेदन है मैं किया हूं, आप अपने कृपावश इसको स्वीकार कीजिए। तो इसी प्रकार भक्ता जब अव्यभिचारिणी भक्ति को संपन्न करता है तो भगवान की कृपा से ये सारी उनकी जो बंधन है कर्म के बंधन वो कट जाता है। मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति, एताम मायाम ते तरंति। भगवान सबके ठिकाने ही लिए हैं, भगवान इसलिए कह रहे कि मैं उनका ही उद्धार करूंगा। तेसंग अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मज्जा व्यसित चेतसम, जिसके चित्त मुझ में लगा हुआ है। किसके चित्त मुझ में लगा हुआ है, जेतु सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य मत्पर अनन्य नैव जोगेन माधायन्तं उपासते, सभी कर्म को मुझे अर्पित करके मेरी ध्यान में लगा रहता है उसके लिए। तेसंग सतत युक्तानम, फिर उनके लिए करे तेसंग सतत युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तम जैनमांग उपजानते, तब फिर वो मुझे प्राप्त करता है। तेसंग उनके लिए फिर मच्चिता मदगता प्राण ये कर रहे, तो कहे अरे मैं इतने भजन किया भगवान ऐसे हुए निर्दय, क्या भजन किए, किस संविधान में किए। इसलिए गाइडलाइन दिए, मैनुअल को पढ़कर की मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, इसलिए मैनुअल बुक दिए गए हैं। तो इसी प्रकार ये शास्त्र मैनुअल बुक है। अब शास्त्र विधि को हम त्याग करके मन मना करते हैं भक्ति, हम दीवाना हो जाते हैं। अरे नहीं, जे शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नति न सुखम न परम गति, तीनों चीज से वंचित रह जाएंगे। ये सिद्धि है जीवन की, सिद्धि प्रेम भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकारम। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये कह रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष कौन थे, कौन दत्तात्रेय करके आपके साथ डिस्कशन करके मुझे पवित्रता का अनुभव होगी। सिद्ध पुरुष के साथ संगलाप करने से सारी कलमस दूर हो जाता है। लभे मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि है। तो क्षण भर नहीं गुआना चाहिए, समय बहुत स्वल्प है। काल चक्र में हम सब जा रहे हैं मृत्यु की ओर, जराग्रस्त हो रहे हैं, अनेक सारी विपत्तियां संकट हैं। ये कलि युग में सब प्रकार की है, मंद सुमंद मतयो, और कितना है दोष की निधि है, परंतु हम देख नहीं पाते हैं, दुख और दोष को नहीं दिख पाते हैं। भगवान करके देखना चाहिए, दुख दोषानुदर्शनम, कलि युग में कितनी दोष हैं और कितनी प्रकार के दुख भरी हुई है, फिर भी हम इस यहाँ पर रहने के लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अच्छे मकान, अच्छे गाड़ी, क्या इस समय को सदुपयोग करें और इसी जीवन में हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।